कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां कोई अस्पताल नहीं है। एक माँ अपनी 2 साल की बच्ची को गोद में लिए बेतहाशा भाग रही है।
हाँ, जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा।
बिल्कुल, और वजह यह है कि बच्ची को एक बेहद जहरीले सांप ने काट लिया है।
और सबसे डरावनी बात तो ये है कि पिछले 3 घंटे से उसकी सांसें रुकी हुई हैं।
3 घंटे? मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से तो?
वही तो, मेडिकल साइंस का कोई भी छात्र आपको बता देगा कि अगर इंसान के दिमाग को सिर्फ कुछ मिनटों तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेथ हो जाती है।
हाँ, दिमाग के सेल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल, 3 घंटे का मतलब है कहानी पूरी तरह खत्म।
लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो बायोलॉजी, फिजिक्स और हमारी सारी वैज्ञानिक समझ को एक झटके में पलट कर रख देता है।
और यही वो जगह है जहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं।
सही कहा। तो आज हम डॉक्टर क्रेग कीनर के बेहद चर्चित लेक्चर मिरेकल्स पार्ट 2 एंड एग्जॉसिज्म के इस गहरे विश्लेषण में उतर रहे हैं। और श्रोताओं, हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि कौन सा धर्म सही है या गलत।
बिल्कुल नहीं, हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का जो वास्तविक अनुभव है वो हमारी पश्चिमी तार्किक सोच से इतना अलग क्यों है।
हाँ, क्योंकि आधुनिक दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान के लिए ये बातें अक्सर अंधविश्वास लगती हैं, है ना?
हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी दिशा है हमारी इस चर्चा की, क्योंकि अक्सर आधुनिक समाज में एक धारणा बन गई है कि जो चीजें किसी लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर साबित नहीं हो सकती,
या फिर जिन्हें गणित के किसी फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता।
बिल्कुल, लोगों को लगता है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर कीनर ने दुनिया भर से जो डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स और मानव विज्ञान के दस्तावेज जमा किए हैं, वे इस ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए को बहुत जोरदार चुनौती देते हैं।
तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं।
हाँ बिल्कुल,
शुरुआत उसी कांगो वाली घटना से करते हैं जिसका मैंने अभी एकदम शुरुआत में जिक्र किया।
हाँ,
कीनर की रिसर्च में एंटोनेट मालोम्बे नाम की महिला और उनकी बेटी थेरेसा का रिकॉर्ड मौजूद है।
वो सांप के काटने वाली घटना है ना?
हाँ, बच्ची को सांप ने काटा, शरीर ठंडा पड़ गया, माँ उसे पीठ पर बांधकर दूसरे गांव की तरफ भागी। वहां कोको मोइज नाम के एक व्यक्ति मौजूद थे। वहां पहुंचकर बस एक प्रार्थना की गई और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बच्ची ने अचानक दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया।
अरे वाह!
और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थी।
लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये नहीं थी कि बच्ची जिंदा हो गई।
मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं।
असली हैरानी की बात वो 3 घंटे का समय था।
बिल्कुल,
और यही वो बिंदु है जहाँ इसे महज एक मनोवैज्ञानिक असर या प्लेसिबो इफेक्ट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने पहले कहा, ब्रेन हाइपोक्सिया यानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी एक बहुत ही क्रूर जैविक वास्तविकता है।
हाँ, वो तो एक फैक्ट है।
अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो 5 से 7 मिनट के अंदर न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में बिना किसी मेडिकल उपकरण के 3 घंटे बीत जाने के बावजूद थेरेसा को कोई ब्रेन डैमेज नहीं हुआ।
ये कैसे संभव है?
वही तो, रिपोर्ट के मुताबिक उसने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की, नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और आज वो उसी कांगो में सेवा कर रही है। इंसान के शरीर पर ऑक्सीजन की कमी का जो असर होना चाहिए था वो वहां था ही नहीं।
ये तो ऐसा है जैसे किसी ने उस बच्चे की बायोलॉजिकल घड़ी को ही पॉज कर दिया।
हाँ, एकदम सटीक बात कही आपने।
और मजे की बात यह है कि डॉक्टर कीनर के दस्तावेज सिर्फ इंसानी शरीर तक सीमित नहीं है, प्रकृति और मौसम से जुड़े भी ऐसे ऐसे दावे हैं जो सच में हैरान कर देते हैं।
जैसे वो चीन वाला मामला।
हाँ हाँ, चीन में वॉचमैन नी नाम के एक व्यक्ति का किस्सा बहुत दिलचस्प है। वे एक ऐसे गांव में गए जहां पिछले 200 सालों से उनके एक विशेष त्योहार के दिन कभी बारिश नहीं हुई थी।
200 साल? ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
बिल्कुल, गांव वालों का मानना था कि ये उनके देवता की शक्ति का अचूक प्रमाण है। वॉचमैननी की टीम ने उन्हें चुनौती दी कि इस बार उसी दिन बारिश होगी।
और फिर जो हुआ वो वाकई मौसम विज्ञान के लिए एक पहेली है।
हाँ, आप बताएंगे उस बारे में?
दस्तावेज बताते हैं कि उस दिन इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा त्योहार पानी में बह गया। और सिर्फ यही नहीं, नाइजीरिया का एक और मामला है जिसे इमैनुअल अटोपिन के पिता ने अनुभव किया। उनके घर की छत बन रही थी और अचानक बारिश का मौसम आ गया।
तो छत तो पूरी तरह बर्बाद हो जाती।
बिल्कुल, गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे कि अब तो तुम्हारी छत गई, लेकिन दावा है कि उन्होंने प्रार्थना की और पूरे गांव में 4 दिन तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी।
सिर्फ उस गांव में?
हाँ, और सबसे अजीब बात ये थी कि गांव के ठीक बाहर चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन उस एक विशिष्ट क्षेत्र में एकदम सूखा था।
अरे बाप रे, ये ऐसा है जैसे किसी के पास सीधा मौसम विभाग या प्रकृति का रिमोट कंट्रोल आ गया हो।
हाँ बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल की तरह।
क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? मतलब आप एक खास इलाके में बारिश रोक रहे हैं, वो भी 4 दिन के लिए।
ये कोई मामूली बात तो नहीं है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी घटनाओं के बाकायदा मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह हैं, तो आधुनिक दुनिया, विशेषकर हमारे पढ़े लिखे पश्चिमी समाज और दार्शनिक इन्हें इतनी आसानी से अंधविश्वास कहकर क्यों खारिज कर देते हैं?
इस अविश्वास की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है, खास तौर पर एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय के दौर में। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम का।
डेविड ह्यूम?
हाँ,
उनका नाम तो दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा। 18वीं सदी में ह्यूम ने एक ऐसा तर्क गढ़ा जिसने पश्चिमी अकेडमिक दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका तर्क सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता था। उन्होंने कहा कि चमत्कार प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है।
अच्छा।
और क्योंकि प्राकृतिक नियम कभी टूट नहीं सकते, इसलिए चमत्कार कभी हो ही नहीं सकते।
एक सेकंड, यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इसे ध्यान से सुने तो ये पूरी तरह से एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट यानी गोल गोल घुमाने वाला तर्क है ना?
बिल्कुल, वही तो।
ह्यूम मूल रूप से ये कह रहे हैं कि मैं पहले से ही ये मानकर चल रहा हूँ कि चमत्कार नहीं हो सकते, इसलिए अगर कोई सबूत सामने आता भी है तो वो सबूत ही झूठा होगा।
हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मैंने मान लिया है तो ऐसा ही होगा।
न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक भी तो चमत्कारों पर विश्वास करते थे। ह्यूम का तर्क तो वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपनी आंखें कसकर बंद कर ले और चिल्लाने लगे कि सूरज का कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि मुझे तो चारों तरफ से अंधेरा दिखाई दे रहा है।
बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। ह्यूम ने एक पहले से तय किए गए निष्कर्ष के आधार पर सबूतों को खारिज करना शुरू कर दिया था। कीनर अपनी रिसर्च में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मामले का जिक्र करते हैं जिसने ह्यूम के स्तर की पोल खोल दी थी।
वो कौन सा मामला था?
ये मामला फ्रांस के मशहूर गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की भतीजी का था। उस लड़की की आंख में एक भयंकर और लाइलाज बीमारी थी। उसे एक रेलिक से छुआ गया जो कि कोई ऐतिहासिक धार्मिक वस्तु थी। गवाहों के अनुसार वो लड़की चमत्कारिक रूप से सबके सामने तुरंत ठीक हो गई।
तुरंत? और वो भी सबके सामने?
हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि खुद फ्रांस की रानी के निजी डॉक्टर ने इस मामले की गहन मेडिकल जांच की थी। उन्होंने बाकायदा लिखकर प्रमाणित किया कि ये एक मेडिकल चमत्कार है।
तो ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो किसी दूर दराज के अनजान गाँव में हुई हो। रानी के डॉक्टर ने इसे सर्टिफाई किया था।
बिल्कुल। इसके बावजूद डेविड ह्यूम ने इस पूरे वाक्य को सिरे से खारिज कर दिया।
अरे लेकिन क्यों?
क्योंकि उनके पास इसे गलत साबित करने का कोई सबूत नहीं था। बस ये घटना उनके साचे में फिट नहीं बैठती थी कि प्राकृतिक नियम टूट नहीं सकते।
ये तो बहुत अजीब बात है। और कीनर के स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ह्यूम के इस तथाकथित वैज्ञानिक नजरिए के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और नस्लवादी सोच छुपी हुई थी।
हाँ, ह्यूम की वो रेसिस्ट सोच उनके लेखन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनका मानना था कि सिर्फ अज्ञानी और बर्बर लोग ही चमत्कारों पर विश्वास करते हैं।
मतलब सिर्फ वही लोग जो यूरोप से बाहर के हैं?
हाँ, वे खुले आम ये तर्क देते थे कि श्वेत सभ्यताओं के अलावा किसी भी अन्य सभ्यता ने कभी कोई महान कार्य नहीं किया है, इसलिए अगर पश्चिमी यूरोप के बाहर से किसी चमत्कार की कोई खबर आती भी थी तो वे उसे सिर्फ इसलिए खारिज कर देते थे क्योंकि वो उनके हिसाब से असभ्य लोगों द्वारा बताई जा रही थी।
क्या बात कर रही हैं? ये तो पूरी तरह से पूर्वाग्रह है।
बिल्कुल, और यही एलीट पूर्वाग्रह बाद में रुडोल्फ बोल्टमैन जैसे दार्शनिकों में भी दिखा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो इंसान बिजली और टेलीग्राफ का इस्तेमाल करता है वो आत्माओं या चमत्कारों पर विश्वास कर ही नहीं सकता।
ये कितनी घमंड से भरी सोच है। मतलब आपने पश्चिमी अकादमिक जगत के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही पूरी आधुनिक दुनिया मान लिया और बाकी पूरी धरती के इंसानों के वास्तविक अनुभवों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
हाँ, उन्होंने बाकी दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह इग्नोर कर दिया।
अगर हम इन दार्शनिकों के बनाए हुए इस छोटे से कुएं से बाहर निकलें और असली वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है ना?
वैश्विक आंकड़े वाकई उस पश्चिमी नजरिए को झुठलाते हैं। 2006 में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया था। उनके डेटा के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 10 देशों में लगभग 20 करोड़ ईसाइयों ने ये दावा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में चमत्कारों या दैवी चंगाई का सीधा अनुभव किया है।
20 करोड़ लोग, वो भी सिर्फ 10 देशों से?
हाँ, और चीन का आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। स्रोतों के मुताबिक चीन में होने वाले नए धर्मांतरण में से 50 से 90% के पीछे किसी न किसी चमत्कारिक चंगाई का अनुभव था।
मैंने भी ये पढ़ा था, दार्शनिक जेपी मॉरलैंड का भी यही आंकलन है कि पिछले कुछ दशकों में जो 70% इवेंजेलिकल विकास हुआ है उसकी जड़ें ऐसे ही चमत्कारों से जुड़ी हैं।
बिल्कुल सही।
जब करोड़ों लोग अपनी आंखों से अपने शरीर में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उन्हें महज अज्ञानी या मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार कहकर टाल देना विज्ञान नहीं है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है।
और यहीं पर मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी का नजरिया सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। एरिका बुर्गुइग्नन नाम की एक बहुत ही मशहूर मानव विज्ञानी है। उनके शोध के अनुसार दुनिया के 74% समाजों में आत्माओं या स्पिरिट पोजेशन पर गहरा विश्वास है।
74%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
हाँ, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मानव विज्ञानी खुद भले ही बुरी आत्माओं पर विश्वास न करें, लेकिन वे इस तथ्य को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि ये महज कोई वहम नहीं है।
तो वैसे किस रूप में देखते हैं, मतलब अगर वे आत्माओं को नहीं मानते तो फिर इन घटनाओं को कैसे समझाते हैं?
उनका मानना है कि इन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सीधे तौर पर उनकी न्यूरोफिजियोलॉजी को बदल रहा है। मानव विज्ञान की दुनिया में अगर कोई रिसर्चर इन 74% समाजों के अनुभवों को पूरी तरह से नकार दे तो उसे एंथ्रोपोलॉजी में फ्लैट अर्थर माना जाता है।
फ्लैट अर्थर मतलब वो इंसान जो मानता है कि पृथ्वी चपटी है।
हाँ बिल्कुल, मतलब आप सारे सबूतों के सामने आंखें मूंद कर बैठे हैं।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम विज्ञान की आड़ में उन घटनाओं को बस एक मनोवैज्ञानिक समस्या का नाम दे रहे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे?
हाँ, हम बस लेबल्स लगा रहे हैं।
और डॉक्टर कीनर ने जिन मामलों का जिक्र किया है वे कोई साधारण बुखार उतरने जैसे अनुभव तो है नहीं। कुछ घटनाएं तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जैसे वो डेविड वैन गिल्डर की रिपोर्ट,
वो 16 साल के लड़के वाली घटना।
हाँ, जहाँ एक 16 साल का लड़का अजीबोगरीब जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा था। उसके कमरे में जो हुआ वो किसी भी तरह से मनोविज्ञान के दायरे में नहीं आता। रिपोर्ट के अनुसार उस कमरे की दीवार पे टंगा क्रूस अचानक नीचे गिर गया और उसमें लगी लोहे की कीलें पिघल गईं।
हाँ, लोहे को पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए वो इंसान के दिमाग की कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकती। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ऐसे ही खौफनाक मामले कांगो के ब्राज़ाविल से भी दर्ज किए गए हैं।
ब्राज़ाविल में क्या हुआ था?
वहाँ 3 युवा लड़कों की एक घटना बहुत चर्चित हुई थी। दावा किया गया कि उन लड़कों ने एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ कोई गुप्त अनुष्ठान किया और उसे अपना खून दिया। बदले में उसने उन्हें अपार संपत्ति देने का वादा किया था।
बाप रे, ये तो किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद सबसे बड़े लड़के ने सपना देखा कि वही रहस्यमय आदमी उसे चाकू मार रहा है और अगली सुबह वो असल में मृत पाया गया।
सच में?
हाँ। मामला यहीं नहीं रुका, ठीक यही घटनाक्रम दूसरे लड़के के साथ भी दोहराया गया और उसकी भी मौत हो गई। जब तीसरे लड़के को लगा कि अब उसका नंबर है तो वो बहुत घबरा गया।
तो फिर उसने क्या किया?
उसने स्थानीय संडे स्कूल के शिक्षकों से मदद मांगी। दस्तावेज बताते हैं कि 9 दिन के लगातार उपवास और गहरी प्रार्थना के बाद वो तीसरा लड़का बच गया।
ये सब सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है।
जाने माने मनोचिकित्सक स्कॉट पेक जैसे विशेषज्ञों ने भी अपने करियर में ऐसे मामलों का अध्ययन किया है। उन्होंने माना कि ज्यादातर अजीब व्यवहार मनोवैज्ञानिक बीमारियों का नतीजा होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने मामले ऐसे जरूर होते हैं जो विशुद्ध रूप से राक्षसी या डिमोनिक होते हैं।
मतलब साइंस भी एक पॉइंट पर आकर मानती है कि कुछ तो ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। आध्यात्मिक हमले जैसा महसूस कर रहे थे वे। एक विशाल 3 मंजिला ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े थे। जैसे ही वो वहां से हटे, महज कुछ सेकंड के अंदर वो पेड़ बिना किसी आंधी या तूफान के और बिना जड़ से उखड़े ठीक बीच से फटकर उसी जगह गिर गया जहां वे अभी खड़े थे।
ये बहुत ही डरावना अनुभव रहा होगा उनके लिए।
बहुत ज्यादा। अगर हम इसे सिर्फ किस्मत या संयोग कह दें तो इतनी सटीक टाइमिंग को कैसे समझाया जाए?
जब उच्च स्तरीय अकेडेमिक स्कॉलर्स, मानव विज्ञानी और यहाँ तक कि मनोचिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो भौतिक नियमों से परे हैं, तो उन पर विचार करना ही एक सच्ची वैज्ञानिक सोच है।
सही कहा। अब इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, कोई कोमा से बाहर आ रहा है, कहीं बारिश रुक रही है, तो आखिर इन चमत्कारों का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये होते ही क्यों हैं?
इस क्यों को समझने के लिए हमें विज्ञान और ऐतिहासिक घटनाओं के बुनियादी फर्क को देखना होगा। विज्ञान उन चीजों का अध्ययन है जिन्हें प्रयोगशाला में बार बार दोहराया जा सके, लेकिन चमत्कार इतिहास की अनोखी घटनाएं हैं जो दोहराई नहीं जा सकती।
मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है इनका?
बिल्कुल। भगवान कोई मशीन नहीं है कि आपने एक प्रार्थना की और हर बार एक ही तरह का नतीजा निकल आएगा। कीनर अपने लेक्चर में यीशु के तरीके पर जोर देते हैं जो उनके समय के बाकी ओझाओं से बिल्कुल अलग था।
हाँ, मैंने पढ़ा था कि उस दौर में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाए जाते थे। कोई बदबूदार जड़ों का धुआं कर रहा है तो कोई लंबे लंबे जादुई मंत्र पढ़ रहा है।
हाँ, लोग बहुत कर्मकांड करते थे, लेकिन यीशु का तरीका इतना नाटकीय नहीं था। वे सिर्फ एक शब्द कहते थे और बुरी आत्माएं निकल जाती थी।
ये बहुत पावरफुल लगता है सुनने में।
और ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। डॉक्टर कीनर एक बहुत ही गहरी थियोलॉजिकल बात सामने रखते हैं। वे समझाते हैं कि इस दुनिया में मिलने वाली कोई भी चंगाई अंततः अस्थाई है।
अस्थाई? मतलब अगर कोई चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से वापस आ भी गया तो भी उसे एक न एक दिन तो मरना ही है ना? शरीर तो बूढ़ा होगा ही।
बिल्कुल सही पकड़े आप। और इसीलिए चमत्कारों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक इंसान की बीमारी ठीक करना नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कीनर का तर्क है कि चमत्कार एक पूर्वाभास है, वे आने वाले समय की एक झलक है,
भविष्य की झलक।
हाँ, वे इस बात का संकेत और वादा है कि भविष्य में एक ऐसी नई और बेहतर दुनिया आने वाली है जहाँ कोई बीमारी, कोई दुख और कोई मृत्यु नहीं होगी। ये एक टूटी हुई दुनिया को आशा की किरण दिखाने का माध्यम है।
अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये चमत्कार किसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी के ट्रेलर की तरह हैं।
अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
है ना? ट्रेलर देखकर आपको पता चलता है कि पूरी फिल्म में क्या होने वाला है। ये चमत्कार वो पूरी फिल्म नहीं है, लेकिन ये हमें उस आने वाली आदर्श दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कहानी का अंत क्या होगा।
ये तुलना इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समेट लेती है, और यही कारण है कि डेविड ह्यूम के उस अविश्वास वाले साचे से बाहर निकलना इतना जरूरी है। हमने देखा कि कैसे ह्यूम का दर्शन अपने आप में पूर्वाग्रहों से भरा हुआ था।
हाँ, और फिर हमने उन करोड़ों लोगों के अनुभवों पर बात की जो दुनिया भर में इन घटनाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं।
बिल्कुल। और मानव विज्ञान के उस सत्य को भी देखा जो ये मानता है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए अदृश्य वास्तविकता एक ठोस सच्चाई है, कोई भ्रम नहीं।
इस पूरी गहरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि आज के इस लोग में जहां हमें लगता है कि हमारे पास हर सवाल का वैज्ञानिक जवाब है, हमें अपनी सोच के दरवाजे थोड़े खुले रखने चाहिए।
हाँ, सिर्फ पश्चिमी दुनिया के तर्कों को ही अंतिम सत्य मान लेना वैज्ञानिक होना नहीं है।
दुनिया बहुत विशाल है और मानव अनुभव किसी भी थ्योरी से कई ज्यादा रहस्यमयी है।
हमें ये स्वीकार करना सीखना होगा कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमें एक्सरे मशीन में दिखाई देती है। हर सच्चाई लैब में प्रमाणित होने की मोहताज नहीं होती।
बिल्कुल। कुछ चीजें अनुभव करने के लिए होती हैं और उन्हें महज इसलिए नकार देना क्योंकि वे हमारी समझ से बाहर हैं, हमारी अपनी सोच की कमी है।
सही कहा आपने।
और श्रोताओं, ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। सोचिए, अगर आधुनिक विज्ञान इस अनंत ब्रह्मांड की वास्तविकता के सिर्फ एक बहुत छोटे मापने योग्य हिस्से को ही समझ पाया है, तो क्या ऐसा संभव है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी कई अदृश्य घटनाएं और आध्यात्मिक प्रभाव घट रहे हों जिन्हें हम बस किस्मत या संयोग का नाम देकर खारिज कर देते हैं?
ये बहुत मुमकिन है।
अगली बार जब कोई अजीब संयोग आपके साथ हो तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई सिर्फ एक संयोग था या फिर उस आने वाली दुनिया के ट्रेलर की एक छोटी सी झलक?